रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन बुद्ध कल की अरुव्यास पृथु हरिवंश मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्व। अग्रदास जी नाभाजी के गुरुजी का नाम था। ये नाभाजी थे, ये ब्राह्मण वंश में, ये हनुमान के वंश में पैदा हुए, हनुमत वंश कहलाता है। कि हनुमान जी का कौन सा वंश हो गया? तो हनुमान जी महाराज एक बार बैठे तपस्या कर रहे थे आकाश में। तो आकाश में तपस्या करते हुए उस समय योग विद्या कर रहे थे, तो शरीर से एक पसीना है, वो पसीना आकाश से गिरकर जमीन पर, आकाश से चलकर जमीन पर गिरा। तो आकाश का नाम है नभ और जमीन का नाम है भू पृथ्वी। तो आकाश में आकर यहां गिरा, यहां गिरने पर उनका वंश चला हुआ कि जो आज वो ब्राह्मण वंश में वो कहलाता है, वो हनुमत वंश कहलाता है। उस वंश के परंपरा में नाभाजी हुए नभभूज। नभ माने आकाश, भू माने पृथ्वी, उससे पैदा होने वाले नभभूज नभूज 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 नाभाजी हुए। तो नाभाजी महाराज के ये जन्म से अंधे थे और माता पिता बचपन में ही चले गए। भयंकर अकाल पड़ा था गांव में, पिता तो पहले ही चले गए, मां उस अंधे बच्चे को लेकर जा रही थी, घोर जंगल में गई, वहां उसके प्राण निकल गए माता जी के। तो नाभाजी वहां जंगल में बिचारा एक छोटा सा बच्चा, और वो चारों तरफ सुनसान और दिखे और नहीं अंधा हो, क्या करे? तो नाभाजी पर कोई भगवान की कृपा हुई, उधर से दो संत आ रहे थे, एक का नाम था अग्रदास जी, एक का नाम था किल्लदास जी, दोनों आ रहे थे। संतों ने देखा कि बच्चा है, छोटा सा, बड़ा सुंदर बच्चा है, और बच्चे का रूप वगैरह देखकर विचार किया होनहार बच्चा होगा। तो अग्रदास जी ने क्या किया, अपने पास कमंडलू में जल था, वो जल उसकी आंख पर छिड़क दिया नाभाजी की, आंख पर छिड़क दिया नाभाजी के, नेत्र खुल गए, नेत्र खुल गए, प्रकाश हो गया उनको, और फिर अग्रदास जी की सेवा में रहे। अग्रदास जी ने उनको खूब अच्छा भगवान का बना दिया। इसलिए ये अग्रदास जी को अपना गुरु मानते हैं, और अग्रदास जी की प्रेरणा से ही ये भक्तों के चरित्र के अंदर प्रवृत्त हुए। तो कहते हैं 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास उर पद धरो। मैं अपने हृदय में अग्रदास जी के चरणों को रख करके और ये 24 अवतारों की वंदना करता हूं। 24 अवतारों में सबकी कथा है, मीन की कथा, मीन मीन माने मत्स्य अवतार की कथा सब जानते हैं, वराह भगवान की कथा सब जानते हैं, नर हरि नृसिंह भगवान कमट कछुआ ये सब कथाएं सब लोग जानते हैं। सब ये अपने श्रीमद् भागवत में आती है कथाएं, वो वैसी की वैसी कथाओं का यहां हिंदी में निरूपण किया है। इसमें एक वामन भगवान की विचित्र कथा दी है। वामन भगवान थे, ये कश्यप और अदिति के यहां जन्म लिए थे। तो ये राजा बलि के वहां जा रहे थे, वामन भगवान हाथ में छत्ता, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पुस्तक आसन और ब्रह्मचारी का दंडा होता है कान तक। तो छोटा सा बच्चा अब छत्ता भी लगाए, डंडा भी हाथ में, कमंडल भी हाथ में, पुस्तक खाक में, आसन भी खाक में, छोटे से भगवान जा रहे थे, वामन भगवान। तो मार्ग में एक नदी आई, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी रोचक कथा है। तो नदी आई तो वहां जाकर खड़े हो गए वामन भगवान। तो वो नदी के अंदर उन्होंने देखा कि क्या पता छोटी सी होगी, पानी बहता हुआ ही। थोड़े आगे गए तो यहां नाभि तक वे डूबने लगे, तो वापस आ गए। जैसे छोटा बच्चा डरता है, भागता है, ऐसे वापस आ गए। फिर सोचे कि भाई जाना तो है मुझे, क्या करूं। फिर जाते हैं तो फिर वो नाभि तक पानी आया, डर लगा कि आगे जाने कितना गहरा है, फिर वापस आ गए। अब कभी हाथ में से लकड़ी खिसक जाए, कभी कमंडल खिसक जाए, कभी आसन खिसक जाए, वो इनको इधर उधर संभाले करे। सामने एक ब्राह्मण देख रहा था, नदी के सामने ब्राह्मण था। ब्राह्मण ने जोर से पूछा, ए बालक कहां जाना है? तो कहा, भाई मुझे तो राजा बलि के यहां जाना है। राजा बलि तो यज्ञ में, तुमको वहां जाके क्या करना है? कि मुझे वहां जाकर के दक्षिणा लेनी है, दक्षिणा लेने के लिए जाना है। तो क्या बाधा है? बाधा तो ये नदी है, नदी के अंदर मत आना, इस नदी में मैं भी डूब जाता हूं, इतना इतना पानी, लेकिन मुझे तो तैरना आता है, मैं तो नदी को पार करता हूं। तो अब तू कैसे जाएगा कि क्या करूं, जाना तो चाहता हूं लेकिन कोई नौका भी नहीं, नाव भी नहीं, कोई सहायता भी नहीं। तो नहीं सही, एक बार दान नहीं लिया तो क्या हो गया? कि नहीं, मुझे दान लेना तो बहुत जरूरी है। अरे ब्राह्मण कोई दान के लिए मरते थोड़े ही नहीं। कि नहीं, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं, मेरा परिवार ऐसा नहीं है, मेरे मन में लोभ तो नहीं है, परंतु मैं राजा बलि के यज्ञ को सफल करने के लिए दान लेना चाहता हूं। ब्राह्मण दान लेता है तो वो लोभ के लिए नहीं लेता है, लालच की पूर्ति के लिए नहीं लेता है। ब्राह्मण दान लेता है अगले व्यक्ति की दान की भावना को सुरक्षित करने के लिए। ये तो छोटा सा बच्चा होकर इतनी अच्छी बात कहता है। तो कहा, अच्छा हम तेरे को पार तो कर देंगे, पर तेरे को दान में जो मिले ना उसमें आधा हिस्सा मेरा होगा। तो कहा, जी आधा आप ले लेंगे तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा? आधा मैं कैसे देऊं आपको? भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, तो पार हो ले, हो जा पार। पार तो मैं हो नहीं सकता हूं, मेरी सहायता करो, मेरा हाथ पकड़ लो। कि हाथ पकड़ने से कैसे होगा? हाथ पकड़े हो तो नदी तो मेरे से भी ज्यादा गहरी है, और तेरा हाथ पकड़ने तो डूब जाएगा। तो मुझे बचाओ, कैसे करो, मुझे इस नदी से पार करो, फिर मेरे को बताओ तुम मेरे को क्या दोगे। तो अच्छा एक काम करता हूं, मैं वहां दान में जो लूंगा उसमें से मेरे को जो पसंद आएगी वो चीज तुमको दे दूंगा। वहां क्या मिले क्या नहीं मिले मेरी पसंद से ले लूंगा। कहने ऐसा करो कि तुम जाओ दान मांगने के लिए, पहले मैं मांग लू उससे, पहले मैं मांग। तो कहा नहीं, जब तुम मांग लोगे तो फिर मैं नहीं मांग सकता, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म होता है कि कोई पहले वहां पर जाकर के पहुंच गया मांगने के लिए तो उसको नहीं जाना चाहिए। तो पहले तुम मांग लेना, फिर मैं मांगूंगा तो तुम्हारा भी धर्म नहीं रहेगा, तुम भी मेरे मांगने के बाद कैसे मांग सकते हो। वो आदमी भगवान वामन से इतनी बातें सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि छोटा सा बावनिया और इतना अच्छा ज्ञान, इतना मीठा बोलता है, उसकी तो इच्छा हुई इससे बातें करते ही रहे। अंत में भगवान ने कहा मेरी मर्जी आएगी वो चीज मैं आपको दे दूंगा। फिर आपको उस के देखो मैं खुश हो जाऊं ऐसी चीज देना, या आप खुश नहीं होंगे आप बहुत खुश हो जाएंगे, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा बस अब ठीक। अब वो आदमी आया इधर आकर के कहने लगा ऐसा करो बच्चे मेरे यूं कंधे पर बैठ जाओ और एक पैर यूं बीच में यूं बैठ जाओ और तेरा पैर है ना वो मेरे बगल में यूं कर लेता हूं इसमें अटका लेना बुझा में ये इधर अटका लेना ताकि मैं चलूं तू गिरे नहीं। बहुत अच्छा किया है तो बहुत अच्छा किया ऐसे करके उसने बैठाएगा तो सब सामान को संभाले रखना क्योंकि सामान को तुम नहीं संभाल पाओगे तो मैं तो सामान को संभालूंगा नहीं। क्या अच्छी बात है। तो भगवान यूं बैठ गए अपने सब सामान लिए हुए पैर उसके खाक में ही अटका दिए चले। भगवान का जो स्पर्श हुआ उसके चरणों का छाती से स्पर्श हुआ और भगवान के शरीर का या कंधे से ही स्पर्श हुआ और ये और कह दिया देख बच्चे मैं चलूंगा ना पानी में थोड़ा मुझे तेज चलना पड़ेगा तो मेरे सिर को यूं पकड़ गिरे नहीं। तो भगवान ने यूं कर लिया अब चले। इतना आनंद आया उसको इतना आनंद आया आंखों से आंसू आ रहे तू क्या है रे तेरे में तो वजन है ही नहीं तू बहुत हल्का है और तेरा स्पर्श भी मुझे बहुत आनंद दे रहा है तेरी वाणी में बड़ा आनंद है कौन है तू मैं तो ब्राह्मण हूं। ऐसे करते हुए उसने क्या किया कि भगवान के चरण थे ना चरण यूं देखे चरण नीचे से चरण तो थे ही यार लेकिन चरण देखे चरण देखे तो ये भगवान के चिन्ह भगवान के चरणों में जो जो चिन्ह होते हैं वज्र के होते हैं जो क्या होता है मछली होती है कई चीजों का चिन्ह होता है भगवान का चरण उसका कारण होता है। भगवान के चरणों में जो का चिन्ह होता है जो अनाज वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। भगवान के चरणों में ध्वजा होती है झंडा वो विजय का प्रतीक है। जिस आदमी को विजय चाहिए वो भगवान के चरणों में लगी हुई ध्वजा का ध्यान करे। जिसको ऐश्वर्य चाहिए धन धान्य चाहिए वो जो का ध्यान करे जो। ऐसे अलग 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 है। जिसको काम क्रोध लोभ मोह आदि से विजय प्राप्त करना हो भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र का ध्यान करे। किसी को भगवान की कृपा ही कृपा चाहिए तो नेत्रों का ध्यान करे। कई है ये कहां तक बताया देखा तो कहा कि तू ब्राह्मण है क्या। हां मैं ब्राह्मण हूं। सच बताऊं ब्राह्मण क्या है तू जाने कौन है कि मैं कौन हूं। मैं तो ब्राह्मण हूं। अच्छा तेरे पिता माता का नाम बता। मेरे पिता का नाम कश्यप जी है मेरे मां का नाम अदिति जी है। कश्यप और अदिति की संतानों हा, तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा नहीं हो क्या? मुझे तो ऐसा लगता है तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। ऐसी बातें हुई थी, नदी पार हुई। नदी पार होते ही भगवान को झुक करके भगवान उतर गए। उतर गए, उसने कहा कि सच बताओ आप कौन है, क्योंकि आपने मुझे क्या समझाया? क्योंकि जो मुझे जो समझता है उसी के अनुसार ही मैं रहता हूं। आपने मुझे क्या समझा कि मैंने तो आपको साक्षात भगवान समझा है। तो आपने यदि भगवान समझा है, जिस किसी को भी आप भगवान समझोगे वो भगवान ही होगा। कि नहीं, मैं इतनी बातों में नहीं फंसना चाहता, तुम खुद बताओ कौन हो। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए। भगवान ने कहा, देखो मैं वहां जा रहा हूं बलि के यज्ञ में, वहां बलि का यज्ञ पूरा करूंगा और तुमको मैं इसके बदले में अपना प्रेम देता हूं। प्रेम काम निहाल हो गया। ब्राह्मण को अपूर्व सुख मिला, दर्शन से मनमोहित हो गया और भगवान ने भी उसको अनेक प्रकार से मोहिनी में डाल करके अपने प्रेम पास में बांध लिया। भगवान में प्रेम हो गया। फिर आगे राजा के वहां गए, तीन पैर उन्होंने पृथ्वी के मांगे। ये सब बातें इसमें परशुराम जी की भी कथा, जितने अवतार हैं सब अवतारों की कथा इन्होंने विशेष रूप से यहां कही है। कृष्ण अवतार है, बुद्ध अवतार है, व्यास जी महाराज का अवतार है, यज्ञ अवतार है, बुद्ध अवतार है, बुद्ध अवतार। देखो बुद्ध भगवान थे ना, ये बुद्ध भगवान कौन हुए? ये बुद्ध भगवान हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि दैत्यों ने इंद्र से कहा कि हे इंद्रादि देवताओं, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहां से आई? तब तो उन्होंने पूछा कि कैसे पूछ रहे हो आप? तो हम ऐसे पूछ रहे हैं कि जब कभी भी हम तुमसे युद्ध करते हैं तो हम हार जाते हैं, तो बताओ कि तुम क्यों कैसे जीतते हो? तब इंद्र ने सरलता से कह दिया कि हम यज्ञ करते हैं, हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, हम वेदों का सम्मान करते हैं। वेद के द्वारा जब अच्छे ब्राह्मण यज्ञ करते हैं उससे हमको बल मिलता है। वो इतना बल होता है कि उस बल को कोई दूसरा हरा नहीं सकता है। तो दैत्यों ने ये बात सुनकर के कहा अपने भी यज्ञ करो, तो उन्होंने भी यज्ञ करना चालू कर दिया दैत्यों ने। अब दैत्यों ने जब यज्ञ किया तो दैत्य लोग तो विधि विधान से तो करते नहीं, तमोगुण खूब बढ़ने लग गए। अब तमोगुण के कारण से देवताओं का तमोगुण बढ़ा, क्योंकि उनके यज्ञ में, व्रत में, दान में, धर्म में, सब में तमोगुण ही तमोगुण छा गया। इतना तमोगुण, इतना अंधकार छा गया कि इनका वर्चस्व बन गया, देवता लोगों का वर्चस्व कम होने लगा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया, रे अनर्थ हो जाएगा, अज्ञान ही अज्ञान बढ़ जाएगा। जो आदमी जिसके योग्य नहीं होता, उस आदमी को उस योग्यता पर पहुंचने पर अनर्थ करने के अलावा दूसरा कोई उसको सूझेगा ही नहीं। तो जो जिसके योग्य है वो काम होना चाहिए। तब भगवान ने विचार किया कि क्या करें, इनको यज्ञ से निषेध करें। तब गौतम बुद्ध के रूप में भगवान ने अवतार लिया। कपिल वस्तु बिहार में पटना के पास कपिल वस्तु स्थान, और वहां पर ये भगवान ने अवतार लिया। इनका नाम था सिद्धार्थ। बचपन से ही ये एकांत रहना, कम बोलना और बहुत कम हंसना और एक चिंतन में बने रहना, ये बचपन का ही स्वभाव था। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मेरा एक ही तो बेटा है और न तो इसका कोई राज्य में मन है, न कोई इसका परिवार में मन है, न माँ में मन है, न मेरे में मन है, न धन संपत्ति में मोह है, क्या करें। थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने पर उसका विवाह कर दिया। उसकी पत्नी का नाम था यशोधरा और एक पुत्र हुआ, उसका नाम था राहुल। तब भी कोई नहीं, न तो पुत्र में मोह है, न स्त्री में मोह है। राजा फिर चिंतित हुआ। फिर राजा ने क्या किया, मंत्री को बुलाया कि मंत्री जी मेरी एक बड़ी भारी समस्या है। कि क्या है महाराज? कि देखो मेरे एकमात्र ये लड़का है सिद्धार्थ, और ये न तो राज्य का काम देखता है, न कोई इसका धन से मोह है, न माँ बाप से मोह है, न अपनी स्त्री से मोह है, न बाल बच्चे से मोह है, कोई मोह नहीं है, कैसे राज संभालेगा। बात तो ठीक कहते हैं महाराज, तो बताओ आप बताओ क्या आज्ञा दो, क्या करें। ऐसा करो इसको थोड़ा घुमाओ, दिखाओ अपना राज्य दिखाओ। क्या ठीक बात। तो मंत्री जी ने कहा महाराज राजकुमार जी आपका राज्य कितना बड़ा देखो तो सही, आपका अपना राज्य क्या देखना है मंत्री जी। क्या नहीं, अपना राज्य संभालना चाहिए, अब आप योग्य हो गए, देखो तो सही आपका राज्य कैसा वैभव से परिपूर्ण है। बार बार कहा गया था चलो चलो। मंत्री जी बैठ गए रथ में और सिद्धार्थ भी बैठ गया रथ में। चलते गए चलते गए चलते गए, सबसे पहले एक कोढ़ी आदमी दिखाई दे, कोढ़ी गल रहा है शरीर, मक्खियां बैठ रही है, मवाद निकलता है। कोढ़ी में क्या है कि मांस है और खून है, इनमें खून के अंदर मवाद पड़नी चालू होती है। आगे के जो ये फिर वो मवाद मांस के साथ मिलती है तो गलते गलते ही अंग खंडित होते चले जाते हैं। आज ये यहां से चलते चलते ही कुछ कर सकता नहीं और हाथ पैर दोनों ही उसके गलने चालू होते हैं, कहीं जा सकता नहीं। तो कहा ये कौन है, कौन क्या है? मनुष्य, मनुष्य तो मैं भी हूं, मनुष्य तो आप भी हूं, मनुष्य तो सारथी भी है, पर इस कदर नहीं, हाथ नहीं गल रहा है, क्या है? क्या अच्छा ये है ना, ये इसके बीमारी कि क्या बीमारी है, ये कोड है कोड। इसमें क्या होता है, इसमें खून के अंदर मवाद होते हुए वो मांस से टकराता है, फिर मांस और खून दोनों गलने लगते हैं, फिर वो शरीर टूटने लगता है। जो हड्डियां आग में जलती नहीं है वे हड्डियां गल जाती है, इतना भयंकर रोग होता है। तो मंत्री जी क्या ये रोग मेरे शरीर में आ सकता है, क्या मेरे लग सकता है क्या? कि राजकुमार ऐसा मत बोलो, आप भगवान करे आपको सदा स्वस्थ रखे। नहीं, स्वस्थ रखे तो अलग बात है, क्या ऐसी दशा हो सकती है क्या मेरी? कि साहब माफ करना, क्षमा करना, यदि आपके प्रारब्ध में होगा, भाग्य में होगा तो आप ऐसे बन सकते हो, और भाग्य में नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। अच्छी बात, कोई बात नहीं। आगे चले, आगे चले, देख बुड्ढा आदमी जा रहा था, यूं कुलड़ा हुआ, यूं लकड़ी हाथ में लिए हुए, वृद्धावस्था में वायु के द्वारा इस ये हड्डी यूं झुक जाती है। जैसे बांस का पेड़ होता है वो हवा से यूं झुकता है, ऐसे हमारी ये सीधी हड्डी है ये झुक जाती है वृद्धावस्था में वायु की प्रधानता से। जैसे जोर से हवा चलती है तो बड़ा बड़ा पेड़ यूं झुक जाते हैं, ऐसे शरीर झुक जाता है। तो कहा ये क्या है कि ये भी महाराज आदमी है, ये क्या है आदमी, ये तो यूं होकर चलता है, ऐसा वृद्ध अवस्था है बूढ़ा। तो क्या ये अवस्था मेरी भी होगी कि महाराज इतनी उम्र लोगे तो होगी? तो अभी मैं जैसे हृष्ट पुष्ट आराम से चलता फिरता दौड़ता कूदता हूं, क्या ये अवस्था मेरी नहीं रहेगी? ये तो राजकुमार जी नहीं रहे, तो ऐसे बूढ़ा होना पड़ेगा, अवस्था आने पर तो होना पड़ेगा, लकड़ी के सारे चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तब तो कोई बात ही नहीं साहब, तो अब इतनी उम्र आने पर तो सबके शरीर के साथ होता है। ठीक है, आगे चले तो एक चौराहे पर पहुंचे और चौराहे पर एक मुर्दा था, उसको लेटा रखा था। चौराहा आता है तो मुर्दा को रखा करते हैं। तो ये क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक आदमी मर गया। मरना क्या होता है? मरना होता है शरीर में से प्राण निकल गए। प्राण के निकल जाने के बाद देखने की सुनने की कोई शक्ति नहीं रहती थी। फिर वो जैसे और काष्ठ रहता है, लकड़ी वगैरह जैसे और वस्तु रहती है, वैसे वो निर्जीव हो जाता है। और फिर इसको ले जाकर के श्मशान में ले जाकर जड़ा देते हैं, जड़ा देते हैं। दर्द नहीं होता उसको, दर्द करने की जो शक्तियां है वो तो इसमें से निकल जाती है। सुख का अनुभव करने वाली शक्ति, दुख का अनुभव करने वाली शक्ति तो यहां है ही नहीं, इसलिए चले जाती है, निकल जाती है। अब जैसे इस काष्ठ को जलाए, लकड़े को जलाए, इसको जलाए, एक ही बात, इसको मुर्दा बोलते हैं, मरावा बोलते हैं कि मरावा बोलते हैं। मंत्री जी, क्या ऐसी अवस्था मेरी भी होगी कि लोग मुझे उठा करके मशान में ले जाकर जड़ाएंगे? राजकुमार, भगवान न करे हम अपनी आंखों से ये दृश्य न देखें, पर ये तो सबके साथ होगा, आपके पिताजी के साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, आपके बेटे के साथ भी होगा, मेरे बेटे पोते सबके साथ, ये तो मरना पड़ेगा, ये तो मरना ही पड़ेगा। तो क्या कि फिर ये मेरा राज्य, मेरे स्त्री पुत्र धन संपत्ति इनका क्या होगा? ये तो साहब यहीं रह जाएगा। क्या मरने के बाद वापस आके पूछता नहीं कोई कि मरना कोई गांव जाने के समान थोड़ा ही? वो तो बस चला गया, चला गया, चला गया, सदा के लिए चला गया। तब वहां का रथ रोको, मेरा राज्य, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा सुख, मेरा आराम, ये सब कुछ छूटेगा ही, तो मैं छोड़ दूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले छोड़ दूं मैं, मेरा पिताजी को प्रणाम बोल देना, मैं तो ये चलाया ऐसे रवाना ही हूं। अब आप चलो कि मुझे आपके महाराज क्या कहेंगे, आप पहले महल में चलो ना, उनको बोल देना, और न वो मेरे पीछे आए, मेरे पीछे आने पर मैं कोई वापस आने वाला नहीं, रवाना हो गए, रवाना हो गए, हो गए, हो गए। वहां जाकर के वे तपस्या करने लगे, तो वहां उनको ज्ञान हो गया, इसलिए उनका नाम बुद्ध हुआ। भी कैसे हुआ कि एक बार बहुत सी जवान स्त्रियां उनके आसपास में जंगल की शोभा देख रही थी, तो वो नाच रही थी और वो भजन गा रही थी। तो भजन का एक अंश उसके कान में पड़ा, जिसका अर्थ ये था कि सितार के तारों से बड़ी अच्छी आवाज आती है, परंतु यदि ज्यादा कस दोगे तो टूट जाएगा और ज्यादा ढीला कर दोगे तो आवाज बंद हो जाएगी। तो सितार के तारों को जैसे न तो ज्यादा पूरा कसा जाता है कि वे टूट जाए, न एकदम ढीला किया जाए, ठीक उचित मात्रा में रखा जाता है, तभी वहां से बढ़िया स्वर निकलते हैं। गौतम बुद्ध ने देखा कि अच्छा, ये तो मुझे शिक्षा मिली है, मैं शरीर को एकदम सुखा रहा हूं, खाना पीना सब बंद करके एकदम सुखाना, ये तो ज्यादा कसना हो गया, ये तो ठीक नहीं है। रातों रात कई रातें जगता रहता हूं, ज्यादा जगने से बुद्धि में पूरी शक्ति नहीं रहती, सोचने समझने की नींद आएगी, नींद तो आनी चाहिए, तो उचित भोजन और नियमित निद्रा आदि का व्यवहार उन्होंने अपने शरीर के साथ प्रारंभ किया, तब जाकर के उनको एकदम स्वपूर्ण ज्ञान हो गया। और पूर्ण ज्ञान होने के बाद वे बुद्ध कहते हैं, बुद्ध उन्होंने आकर के, वो साक्षात भगवान थे, उन्होंने आकर के सब वैदिक क्रियाएं बंद कर दी, वेद वगैरह सब बंद करो, ब्राह्मण कुछ नहीं, देवता कुछ नहीं, और ये यज्ञों से कुछ नहीं होता, बंद करवा दिया। भगवान स्वयं वेदों की रक्षा के लिए और यज्ञों की रक्षा के लिए होते हैं, वे भगवान वेद यज्ञ सबको बंद करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि वेद और धर्म के नाम पर पाप बढ़ रहा था, इसलिए बंद करवाए। अनधिकारी लोग यज्ञ करने लग गए, अनधिकारी लोग वेदों का मनमाना अर्थ करने लग गए, वेदों की बातों का दुरुपयोग करने लग गए, तब भगवान ने ऐसा उनको लोगों को उपदेश दिया कि लोगों की वेदों में श्रद्धा हट गई। देखो, पुलिस होती है ना, वो हमारी रक्षा के लिए होती है, परंतु कभी पुलिस ही आपके घर में आकर कहती है निकलो इस घर से बाहर निकलो, कि हमारा घर है, हम बाहर क्यों निकले, हम आपको कहते हैं निकलो, आपका जरूरी सामान है बाहर निकाल लो, जल्दी निकलो घर से, कि क्योंकि आपका घर इतना इतना टूट गया है, ये टूटा हुआ घर है, ये कभी आप पर गिर जाएगा, आप बाहर निकलो, हम इसको यहां से गिरा करके वापस ठीक बनाएंगे, उसके बाद आप रहना। तो वो क्यों हमको बाहर निकाल रहे हैं? हमारे हित के लिए निकाल रहे हैं। ऐसे ही भगवान यज्ञों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, परंतु कब? जब यज्ञों का संसार के अंदर सदुपयोग होता है तब। लेकिन इस यज्ञ के बहाने से कोई दुरुपयोग करता है तो, जैसे कोई अभी आदमी चोरी करके आया और आकर के अपने सत्संग में आकर के चुपचाप आकर के बैठ गया, और मैं राम 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 राम, पीछे पुलिस आ रही है, पुलिस वाले को पता है ये यहां अंदर घुसा है, वो यहां आकर के देख करके कहेगी साहब उठो यहां से, उठो भाई उठो, वो कहता है मैं तो सत्संग करता हूं, राम राम करता हूं, तुम उठो राम राम करते हो तो हम जानते हैं, देने अपन भी नहीं बोल सकते, पुलिस कहेगी आप बीच में मत बोलो, ये चोर है, चोरी करके आया है, या तो छिपने का बहाना लिया है इसने, अपन भी कहीं निकलो यहां से, हम यहां शुद्ध सात्विक सत्संग करते हैं, तुम चोरी के बाद यहां आकर हमारे इस अच्छाई को अपने में लेना चाहते हो, बचना चाहते हो, पाप करके अच्छाई के नाम से बचना चाहते हो, निकलो यहां से, अपन सब भी निकालेंगे। ऐसे भगवान ने आकर के और देवियों के द्वारा और देवियों के वंशों से द्वारा जो यज्ञ हो रहे थे उनको मना करवाया। बड़े सहनशील थे गौतम बुद्ध। एक बार एक गौतम बुद्ध को कोई ब्राह्मण गाली निकाल रहा था, बड़ा पाखंडी है, ये है, वो खूब गाली निकाल रहा था। गौतम बुद्ध चुपचाप सुन रहे थे। वो खूब बकिया, बकने के बाद वो चुप हुआ तो गौतम बुद्ध ने इतना ही पूछा कि भाई आपके घर में कभी कोई मेहमान आते हैं क्या? क्या आते हैं? मेहमान को आप कोई चीज देते हो कि देते हैं? यदि वो चीज नहीं स्वीकार करे तो उस चीज को क्या करते हो? कि हम हमारे घर में रख लेते हैं। हमने उनको बिस्तर दिया, तकिया दिया, रजाई दी, सब दिया और कहा कि नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं तो हम हमारे अंदर रख लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज स्वीकार नहीं करते वो आप ही के पास रहती है ना, रहती तो हमारे पास है। तो आपने जितनी गालियां हमको निकाली है हमने उसको स्वीकार नहीं किया, अब ये गालियां किसको लगेंगी? तो वो ब्राह्मण सकपका गया और सकपका करके और उनके सामने आकर झुक गया कि महाराज आज मुझे ज्ञान हुआ कि किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कड़वे शब्द बोल करके हम अपने लिए खेती करते हैं। लोग कहते हैं कि देखो बेवजह हमको ये आदमी ऐसे बोलता है, बेवजह हमको ऐसे बोलती है, कोई कारण नहीं ऐसे बोलते। ऐसा है नहीं, बिना कारण नहीं बोलता। किसी समय कोई बोया कहा हुआ है, बोया हुआ है शब्द, वो ऊपर शब्द निकलता है। इसलिए कोई आदमी हमको कड़वा वचन बोले तो मन में यही समझना कि भाई हमने इनको पहले कभी कड़वा कहा है। इस जन्म का तो याद है, पिछले जन्म का याद थोड़ा ही नहीं। ये जितना जीवों का आपस में मेल होता है वो जन्म जन्मांतर का संस्कार होता है। तो किसी जन्म में हमने इनको कड़वे वचन कहे तो आज बोलेंगे, अब अपने सावधान रहो। देखो कड़वा वचन सुनने में नुकसान नहीं है, कड़वा वचन बोलने में नुकसान है। आदमी समझता है कि मैं सही हूं, मैं कड़वे वचन क्यों सुनूं? आप सही हो थोड़े समय के जानकारी के अनुसार, लेकिन भगवान सही है बहुत लंबे क्या अनंत काल की बात भगवान जानते हैं। भगवान के प्रकाश में जो काम हो रहा है वो कोई गलत नहीं हो रहा है। हम व्यर्थ ही उसमें नाराज हो जाते हैं। एक तो उनकी ये शिक्षा थी, एक उनके अंदर धैर्य इतना था अपने शिष्यों को शिक्षा देते बुद्ध भगवान कि देखो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, परीक्षा है। एक शिष्य को बुलाया गौतम बुद्ध ने, बुला करके और कहा कि भाई अमुक अमुक जगह जाकर के तुमको उपदेश देना है, परंतु वहां के लोग बड़े उद्दंड हैं, वो मुंह से चाहे जो कुछ बोलते रहते हैं, तुम वहां जाकर कैसे उपदेश दोगे? कि कोई बात नहीं महाराज, वो आदमी बड़े अच्छे हैं। क्यों? वो मुंह से ही तो बोलते हैं, कोई लात भूसा तो नहीं मारते? कि नहीं, वो तो लात भूसा भी मारते हैं तब भी बड़े अच्छे हैं महाराज। क्यों? लट्ठी से तो नहीं मारते हैं? क्या नहीं, वो लट्ठी से भी मारते हैं तब भी बड़े अच्छे हैं? क्यों? वे शस्त्र से तो नहीं मारते हैं? क्या नहीं, वो तो शस्त्र भी उठाते हैं और शस्त्र से भी मारते हैं? तो महाराज ये संसार दुख रूप है, रोगों का घर है, आत्मघात तो महान पाप है, मेरे शरीर में बहुत रोग बीमारियां लगी हुई है और ऐसा किसी आदमी का शरीर नहीं है कि जिसमें उनके कीटाणु न हो। जितने आदमी अपन देखते हैं उसके कैंसर हो गया, उसके टीबी हो गई, उसके ये हो गया, उसके वो हो गया। अपने शरीर में भी सब बीमारियों के कीटाणु हैं, पर वो पैदा होते तो वो आदमी उस रोग से ग्रस्त माना जाता है, और पैदा नहीं होते तो स्वस्थ है। शरीर में इस खून के अंदर दो प्रकार के कीटाणु, एक लाल कीटाणु एक सफेद कीटाणु। सफेद कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और लाल कीटाणु है ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो जब सफेद कीटाणु बढ़ने लगते हैं तब अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, और लाल कीटाणु बढ़े रहते हैं तो सब बीमारियां दबी रहती हैं। पर ऐसा नहीं है कि अपने अंदर भाई उसी में कोई बीमारी थी, वही बीमार है, अपने नहीं है, सब बीमारी सब में है। तो महाराज यदि वो शस्त्र से मुझे मार देंगे तो चलो अच्छा है, मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं आप घात करके नहीं मरूंगा, और मैं भुगत भुगत करके नहीं मरूंगा, तो मार देंगे तो मार देंगे, और जब तक मेरी आयु मेरी है तब तक तो कोई मार सकता नहीं है, और जिस दिन मुझे जाना पड़ेगा उसको कोई रोक सकता नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा शाबाश, अब तुम तुम्हारा ज्ञान पूरा हो गया, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया। अपने शरीर को प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दो और अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दो। दो चीज है, एक शरीर है एक शरीरी है, एक जीव है एक आत्मा है। आत्मा को तो रख दो भगवान के शरण में, और शरीर आदि को रख दो भाग्य के ऊपर, भाग्य में होगा वैसा होगा। जानबूझ के कुछ करना नहीं है, और भाग्य में होगा उसको कोई बदल सकता नहीं है। जाओ अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो गया, तुम कहीं पर भी जाओ, कहीं जाओ तुम्हारा ज्ञान पूरा हो गया। इससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, अपने शिक्षकों का इससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, काफी है कि संसार में तो प्रारब्ध के अनुसार होगा और भगवान के अंदर हमारा प्रेम होगा उसके अनुसार काम होगा। भगवान के तो शरण हो जाओ और संसार को प्रारब्ध के ऊपर छोड़ो, दोनों का अलग अलग विभाग करके रहो। ये सबसे बढ़िया ज्ञान है, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान सदा तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षित है, रक्षित धर्म होता है वो रक्षा करता है। लोग कहते हैं धर्म रक्षा करे हमारी, तो धर्म रक्षा कब करता है कि जिस धर्म की हमने रक्षा की है वो धर्म हमारी रक्षा करता है। एक बार एक माई आई गौतम बुद्ध के पास, मरा हुआ मरी मेरा बेटा मर गया, तो रोई गौतम बुद्ध भी रोने लगे, रोए गौतम बुद्ध। शिष्यों ने कहा महाराज आप तो परम ज्ञानी हो, आपको तो ज्ञान हुआ हुआ है, ये रोना धोना तो अज्ञान में होता है, आप क्यों रोए? गौतम बुद्ध ने कहा ये रोई इसलिए रो दिया, तो रोने से क्या फायदा, कोई बिचारी का दुख दूर करो तुम तो कोई बात नहीं, इसके दुख में दुखी होकर के रह गए, रो करके रह गए क्या हुआ? आप तो ऐसा उपाय करो कि इसका दुख दूर हो। उस बचपन से मां ने भी यही कहा, हां महाराज मेरा दुख दूर करो। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई तुम्हारा दुख क्या है कि बच्चा मर गया, इसको जीवित करो, बस इसको जीवित क्यों करना है, अभी जीवित कर देता हूं। थोड़े से ऐसे चावल लेके आओ, मैं मंत्र बोलूंगा, वो मंत्र बोल करके चावल इस पर डालूंगा, जीवित हो जाएगा। तुम चावल ले आओ, ज्यादा नहीं इच्छा सा, थोड़ा एक लप चावल, ज्यादा नहीं, एक लप भी पूरी नहीं, लप होती मुट्ठी होती है, इतने से चावल, थोड़े से चावल ले आओ, अभी जीवित कर देता हूं मंत्र बोल करके। महाराज बड़ी कृपा हुआ, बड़ी कृपा हुआ, मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा, उसका उसी समय शोक दूर हो गया, जाओ जल्दी करो। चावल लेके आओ, चावल तो अभी लाएंगे बस ठीक है। पर सुनो सुनो सुनो, एक काम करना, चावल हर कहीं से मत लाना, ऐसे घर से चावल लाना जिसमें आज तक कोई मरा नहीं हो, उस घर से चावल ले आना। वो बेचारी बोली वाली, उसने कहा ऐसे तो घर बहुत हो गए, मरा तो मेरे ही मरा है, औरों थोड़ी कोई मरा है। देखो सुख और दुख ये दो ऐसी चीज होती है, आदमी देखता है कि मेरे जो दुख है वैसा किसी के नहीं, नहीं, और मेरे जो सुख है वो किसी के नहीं, नहीं, नहीं। दूसरों की और अपनी परिस्थिति देख करके उसमें सुखी दुखी का अनुमान लगाते हैं। गीता में आता है सुख और दुख में सम रहना, और गीता में आता है सुख और दुख से रहित होना। अब सुख और दुख में सम होना और सुख और दुख से रहित होना बिल्कुल अलग अलग अर्थ है, ये अलग नहीं है। बाहर की परिस्थिति को जो सुख मानते हैं, बाहर की परिस्थिति को जो दुख मानते हैं, उनमें तो सम रहने का साधन करना चाहिए, और अंदर में जो सुख और दुख की वृत्ति पैदा होती है उस वृत्ति को खत्म करना चाहिए। वो है सुख दुख से रहित होना। ऐसा मनुष्य को स्थान स्वरूप और ऐसी साधना करनी चाहिए कम से कम कि इतनी तो हो कि संसार की परिस्थिति से हम सुखी और दुखी नहीं होंगे। और बाह्य परिस्थिति कैसी भी आ जाए, सुखदायी आ जाए तो हमारे पर प्रभाव, हमसे गलती होती है सुख में राजी हो जाते हैं और दुख में सोचते हैं अरे भाई ये दुख तो नहीं होना चाहिए, दुख ऐसा है, दुख में तो सम रहना चाहिए। नहीं, सुख से अभ्यास करना चाहिए। सुख में सुखी नहीं होगा वो आदमी, दुख में दुखी नहीं होगा। तो उस माई ने सोचा कि मेरे बराबर दुखी कौन है, कोई नहीं, सब घरों में सब जीवित होंगे ही, अपने जाकर के चावल ले आए, रख ले आए। गई घर घर में गई कि साहब मुझे चावल चाहिए, एक महात्मा जी चावल फूंक करके मेरे मरे हुए बच्चे को जिला दे दे। अरे भाई कितना चावल चाहिए, एक मुट्ठी क्या, तेरा बच्चा जीवित हो जाए तो हम तो बाबा चावल के बोरे भिजवा दे। क्या नहीं, मुझे तो इतना सा चावल चाहिए, पर शर्त है कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। अरे मैं इतना बुढ़ा हो गया, मेरा बाप अब तक रहेगा क्या, बाप मर गया, दादा मर गया मेरे सामने, मरे मेरा दादा मर गया मेरे सामने मेरा बाप मर गया मेरे सामने, मेरी दादी मर गई, मेरी माँ मर गई, तब तो आपका दाना था। उस घर में गया, उसको एक एक घर में गया, सब जगह कोई ऐसा घर नहीं मिला कि कोई मरा ना हो। अब चावल किससे मांगे, खाली हाथ लौट आई। गौतम बुद्ध के पास पहुंचे, गौतम ने ला ला चावल, चावल अभी जीवित, लाओ ला चावल। क्या कि महाराज ये मौत तो सबके घर में आई है, चावल तो ऐसा कोई मिला ही नहीं, तो फिर इसको भी उठा ले जा, तेरे बच्चे को उठा ले जा, इसका अंतिम संस्कार करो, ये संसार मुर्दों का है, मुर्दों का। कबीर जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है कि भाई ये मुर्दा, ये मुर्दों का गांव, संतों ये मुर्दों का गांव, ये तो मशान है, मशान। मशान में आते हैं तो क्या करते हैं, केवल भजन करते हैं। मशान में जाते हैं वहां पर कोई, अरे रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, वहां पर कुछ नहीं करते, वहां पर ताश नहीं खेलते, चौपड़ नहीं खेलते, शराब नहीं पीते, मशान में जाते और राम राम करते हैं, भजन करते हैं। संतों ये मुर्दों का गांव, चांद भी मरता, सूरज मरता, अब तुमको तारों से क्या काम, संतों ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों के गांव में आ गया। अमर लोक से आए थे, अमर लोक में रहते थे, अमर लोक की जगह या मृत्यु लोक में क्यों फंस गए भाई? मृत्यु लोक में फंस गए, अमर लोक सुआ है। ये अमर लोक था हमारा, संतों ये मुर्दों का गांव। सब मुर्दे हैं यहां, चाहे शरीर देख लो, चाहे वस्तु देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, सब मुर्दे हैं। तो मुर्दे के यहां मुर्दे ही मिलेगा, या किसी को मिलेगा तो मुर्दे को मुर्दा ही मिला है। संतों ने बहुत बढ़िया पद में बात कही कि आपको गुलामी नहीं होती, मुर्दों के यहां रह करके आपको भय नहीं लगता है। एक मुर्दा पड़ा रहे तो चारों तरफ बांस के अंदर भोजन बंद कर देते हैं। अरे भाई, अभी तक मुर्दा पड़ा है घर में, भोजन कैसे बनेगा? सूतक नहीं उतरता है कई दिन तक। तो ये मुर्दों का गांव है। और दुनिया बोलती है कि हमारे पैदा हुए हैं, हमारे पैदा हुए, रुपया भी पैदा हुआ है, रुपया भी पैदा हुआ है, बालक पैदा हुआ है, मुर्दा है मुर्दा। ये मुर्दों का गांव। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि भाई यहां जो जन्म लेता है वो जन्म तो दिखता है, वो मृत्यु हो रही है। महाराज जी कहते थे ना कि जो बालक पेट में है, जिसके जन्मने की उम्मीद है, वो वहां मर रहा है। जो बच्चा पेट में है वो मर रहा है, वो मृत्यु में है। अपन देखते हैं वो जन्मने में है, वो मृत्यु में है, मृत्यु में है। तो जैसे हमारे घर के लोग मरे, वैसे अपने भी मर जाएंगे। अपनी मृत्यु देखो, अपनी मृत्यु, दूसरों की मृत्यु देखते ही अपने पर आना चाहिए, ये मेरी शिक्षा के लिए है। अपने हिंदू धर्म में कायदा है, कोई भी मृत्यु की यात्रा आती हो, शव यात्रा आती हो, तो अपने पास में यदि कोई व्हीकल है तो उससे उतर जाता है, सम्मान करते हैं उसका। मुर्दे का सम्मान है ये, कि मुर्दे का क्या सम्मान है कि वो मुर्दा हमको शिक्षा दे रहा है कि भाई आपके समान ही मैं जीवित था, मैं यहां से चला जा रहा हूं, आपको भी जाना पड़ेगा। आपको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, उसके अंदर का सब शोक दूर हो गया। इसकी मृत्यु तुम तभी तक रो माता जी कि ये तो मर गया, कोई नहीं मरा है, कोई नहीं मरेगा, ये अकेला ही संसार में पहली बार मरा है, तो खूब रो। भगवान को उलाना भी देंगे कि भगवान आपकी सृष्टि में कोई नहीं मरा, ये क्यों मरा? उलाना देंगे। परंतु भगवान को उलाना देने के लायक हम कब हो कि जब हम समझे तो सही कि कोई दूसरा मरा कि नहीं मरा, नहीं मरा तो नहीं बोल सकते। इस प्रकार से गौतम बुद्ध के अवतार की बात आई, पृथ्वी महाराज की बात आई, और कई प्रकार की बात आई। जितने बड़े अच्छे धन्वंतरी भगवान, नर नारायण अवतार, सब ये जो नाबाजी महाराज ने भगवान के अवतार बताए, उन सब की कथा आती है, भागवत में आती है। दत्तात्रेय जी महाराज थे, अत्रि के यहां पैदा हुए, इसलिए इनका नाम दत्तात्रेय पड़ा। भगवान विष्णु के अंश थे और अत्रि के यहां तीन ऋषियों का जन्म हुआ, दत्तात्रेय ऋषि, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा, तीन पैदा हुए। चंद्रमा तो हुआ ब्रह्मा से, और ये विष्णु से हुए दत्तात्रेय, शंकर जी से हुए दुर्वासा, तीन पैदा हुए। कपिल भगवान की भी बात आई, सब भागवत की बातें इसमें आई। अब जो ये भगवान के जो चरण चिन्ह है, जो उस समय देखे गए ना, तो चरण चिन्ह रघुवीर के संतनी सदा सहायका। अंकुश अंबर पुलिस कमल जब धुजा धेनुपद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बुफल कलश सुधारत अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु उरद रेखा अष्टकोण त्रिकोण इंद्र धनु पुरुष विशेषा सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका। ये चरण चिन्ह इसलिए दिए गए हैं कि लोगों को जिन जिन की जैसी जैसी इच्छा होती है वो उस हिसाब से, जैसे धन धान्य की इच्छा हुई तो जो का ध्यान करने का भी बताया। तो ये भी बात ध्यान में रखने की है कि भगवान के दाहिने चरण में जो चिन्ह होते हैं वो चरण चिन्ह भगवान की शक्ति जानकी जी आदि उनके बाएं चरण में रहती है, और भगवान के बाएं चरण में जो है वो उनके दाएं चरण में रहती है। ये संतों के लिए बड़ी सहायक है। जैसे अक्रूर जी गए थे ब्रज में तो भगवान के चरण चिन्हों को देखा। भरतलाल जी चित्रकूट में गए तो उन्होंने हर्षय निरखि राम पद अंका चरण चिन्ह देखे। तो उन चरण चिन्हों में जो मिलन की बात होती है, जिसके जिससे भगवान से मिलन होता है उसके ऊपर उनकी दृष्टि गई। वज्र था, वज्र उसके ऊपर दृष्टि गई, भगवान से मिलना हो। इसलिए भगवान के चरण चिन्हों को देखने पर अलग 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 जब हेतु सुनो सदा दाता सिद्धि विद्या ही को सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है। चिन्ह में सभी तो होत कल की कुचाल देख ध्वजा सु विशेष जानो अभी को विश्वास है। ध्वजा का चिन्ह करते हैं तो कलयुग का कुचाल नष्ट होता है, विजय प्राप्त होती है। भगवान के चरणों में गाय का गोपद होता है, उसको यदि कोई ध्यान में करता है तो भोसागर से पार हो जाता है। कपट कुचाल माया बल सबे जीत बे को दर को दरस कर जीतियो अनायास है। इस प्रकार से भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उसको कलयुग से पिंड छूटता है। अब बताते नाम की महिमा। विधि शंकर विधि नारद शंकर सनकादि कपिल देव मनुभूत नर हरिदास जनक विषम बलि सुख मुनि धर्म रूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंतलो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रदान। बारह भक्त हैं भगवान के जो कि भागवत में आए अजामिल उपाख्यान में। वहां स्वयं यमराज जी कहते हैं कि हम बारह लाख लोग ऐसे जो भगवान को जानते हैं। तो नाभाजी महाराज लिखते हैं कि बारह लोग हैं सब भगवान का नाम लेते थे। विधि नारद शंकर सनकादि किन किन ने कब कब किस प्रकार से नाम लिया है वो इस छप्पे के अंदर व्याख्या में आगे आ जाए। किसने कब नाम लिया तो उसका कैसे उद्धार हुआ। इसमें देखो अजामिल का प्रसंग सबसे बड़ा विचित्र आएगा, जो आपने आज तक सुना नहीं ऐसा प्रसंग आएगा। नाम के प्रभाव से अजामिल का कैसा उद्धार हुआ ये तो आप भागवत में सुनते हैं, परंतु अजामिल की विचित्र कथा है। उसमें थोड़ा समय लगेगा और भी है, थोड़ा थोड़ा नाम तो सभी ने लिया है। अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान, अजामिल ने फिर ये परम धर्म को आगे बढ़ाया भगवान के नाम। इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण संत महात्माओं की गौ माता।